मुझे लगता है कि आपको वो दौर याद होगा, आप रहे होंगे उस समय, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने फिलिस्तीन के पक्ष में बड़ा खुल के बोला था और फिर हमारी मौजूदा सरकार भाजपा भारत की सरकार ने खुल के इसराइल का पक्ष लिया। क्या ये भारत सरकार की जो पॉलिसी थी पहले अटैक में एकदम इसराइल के पक्ष में खड़े हो जाना, इसराइल के समर्थन में बात करना जो अमेरिका कर रहा है, वो भारत के हित में था या अहित में था?
एक तरफ चल रहा है यूक्रेन वॉर, दूसरी तरफ अब शुरू हो गया मिडल ईस्ट वॉर, एंड इफ समथिंग हैपेंस ऑन द चाइना साइड टू ताइवान इट विल बी ए वर्ल्ड वॉर 3।
जो अमेरिका के मूल के लोग हैं, जो अमेरिकन हैं, वो इंडिया के रुख को पसंद कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और अमेरिका में रह रहे लोग अमेरिका के रुख को, अपने ही देश के रुख को पसंद कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं?
अमेरिका में रहने वाले अमेरिकन्स डोंट पे मच अटेंशन टू इंडिया, लेट्स नॉट हैव एनी रॉन्ग आइडिया, दे डोंट केयर, इट इज नॉट पार्ट ऑफ देयर इक्वेशन। आई वुड लुक एट द हिस्ट्री ऑफ लास्ट 75 इयर्स, दैट डज नॉट मीन आई वुड जस्टिफाई वायलेंस, बट द आंसर टू वायलेंस कैन नॉट बी थ्रू वायलेंस।
ठीक बात है।
I'm still Gandhian. Okay. I will not answer violence with violence, because in that process, innocent people get hurt, affected.
अमेरिका की भूमिका को पूरी दुनिया क्रिटिसाइज कर रहा है कि आप अमेरिका को अपने हथियार, लोग कह रहे हैं कि अमेरिका को अपने हथियार बेचने हैं, इसलिए वो इजराइल के पक्ष में जा रहा है।
Everywhere I'm finding that people are losing confidence and trust in their governments. Everywhere. People have a different view than the government. People don't want fights. Nobody wants violence. But state promotes certain level of violence.
नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा, आप देख रहे हैं 4PM News Network। हमास के हमले की मैं तारीफ नहीं करता, मैं उसे बुजदली मानता हूं। किसी की भी हत्या को मैं बुजदली मानता हूं, लेकिन हमास के आतंकवादी कायराना हमले के बाद जो इजराइल ने किया, वो उसको मैं हजार गुना ज्यादा कायराना कदम मानता हूँ। सोचिए, आप किसी भी अस्पताल पर आप मिसाइल दागते समय ये सोचते नहीं हैं कि वहाँ पे महिलाएं, बच्चे, बेकसूर लोग होंगे, सैकड़ों लोग मारे जाएंगे, उनका क्या कसूर था? आपने कुछ आतंकवादियों ने आपके ऊपर देश पे हमला किया, आप उन आतंकवादियों पे काबू नहीं पा सकते, मार नहीं सकते, गुस्से में आके आप पूरा नेस्तनाबूद कर देंगे, लोगों को मार देंगे, मिसाइल डाल देंगे। अमेरिका आके इजराइल के साथ खड़ा हो गया, जिस समय अस्पताल से लाशें निकल रही थी, महिलाओं की निकल रही थी, बच्चों की निकल रही थी, उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति इजराइल के प्रधानमंत्री की पीठ थपथपा रहे थे। हमास के हमले के तुरंत बाद भारत खड़ा हो गया इजराइल के साथ और सबसे बड़ी गलती कर गया। भारत के पास एक ऐतिहासिक मौका था, कहता कि हम फिलिस्तीन और इजराइल के बीच शांति वार्ता का कोशिश करेंगे, हम महात्मा गांधी के देश हैं, एक दुनिया में हमारा नाम बढ़ता, लेकिन हम इजराइल के साथ खड़े हो गए। अमेरिका इजराइल के साथ खड़े हो गया क्योंकि उसको वहां हथियार बेचने हैं। सोचिए आप, जो राष्ट्र केवल हथियार बेचने के लिए युद्ध में किसी यार राष्ट्र को झोंक दे, आग लगा दे, हत्याएं करा दे, वो राष्ट्र कैसे हो? लेकिन बाइडेन को वो अंदाजा नहीं था, सपने में भी अंदाजा नहीं था कि ये गलती उन पर बहुत भारी पड़ने वाली है। अमेरिका में तूफान मच गया, अमेरिका में लोग सड़कों पर आ गए और अपनी ही सरकार का विरोध करने लगे। वो कहा कि हम आपको मध्यस्थता की बात करनी चाहिए थी, आपको शांति की बात करनी चाहिए थी, आप इजराइल की पीठ कैसे थपथपा सकते हैं जिसने मासूमों पर मिसाइल डाली? अमेरिका के राष्ट्रपति को लग रहा है कि वो कितनी बड़ी गलती कर गए। किसी भी राष्ट्र की शान ऐसे ही लोग होते हैं जो शांति की बात करते हैं, जो अहिंसा की बात करते हैं, और जो हिंसा की बात करता है वो किसी भी राष्ट्र का सच्चा नागरिक नहीं हो सकता। अमेरिका के हालात क्या हैं, अमेरिका में राष्ट्रपति का विरोध क्यों हो रहा है, इन सब की पड़ताल बहुत जरूरी है। और ये सबक भी जरूरी है तमाम दुनिया के देशों के लिए, जो सोचते हैं वो अपनी ताकत पर, अपने हथियारों की ताकत पर एक बड़ी सल्तनत को ऐसी ढा देंगे, खत्म कर देंगे, इंसानियत को मार देंगे। तो मैं आज आपको अमेरिका लेके चलता हूं, अमेरिका के एक ऐसे शख्स से मिलवाता हूं जो मूलतः भारतीय हैं, जिनको भारत के सर्वोच्च पुरस्कारों से और एक दो नहीं दर्जनों पुरस्कारों से नवाजा गया है। ना जाने कितनी पीएचडी करी है भारत में, मैं और आप जिस क्रांति की बात कर रहे हैं, संचार क्रांति की बात कर रहे हैं, जिस संचार तंत्र से बात कर रहे हैं, उन्हीं की देन है भारत में। आप समझ गए होंगे मैं सैम पित्रोदा जी की बात कर रहा हूं, शिकागो में रहते हैं, लेकिन उन्होंने बताया मुझसे इस बातचीत में कि अमेरिका में कितना गुस्सा है। और सैम पित्रोदा ने कहा कि हर हालत में शांति की बात होनी चाहिए, गांधी के ख्यालों की बात होनी चाहिए। दुनिया में जो लोग सोच रहे हैं कि हम थर्ड वर्ल्ड वार की तरफ जा रहे हैं, वो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। और उन्होंने यह भी खुलासा किया कि अमेरिका में आखिर कितना विरोध हो रहा है इजराइल के साथ खड़े होने का। रिक्वेस्ट है, पूरा इंटरव्यू सुनिएगा, मुझे जरूर बताइएगा कि अगर इसमें आप इन शांति की बात में अपनी सहमति दे रहे हैं तो बताइएगा, आपको लगता है कि भारत ने गलत किया इजराइल के साथ खड़े होकर तो बताइएगा, अपनी राय से जरूर अवगत कराइएगा। मैं सीधा चलता हूँ सैम पित्रोदा जी के पास। सैम सर, ये देश की राजनीति की बात हुई और मैं थोड़े से विषय से अलग चलना चाहता हूँ, क्योंकि पूरी दुनिया डरी हुई है और सहमी हुई है, और ख़ास तौर से आप जिस मुल्क में रह रहे हैं उस मुल्क के रवैये से डरी हुई है। इजराइल में और हमास के बीच में जो युद्ध शुरू हुआ है, और जिस तरह अस्पतालों में हम रॉकेट मिसाइल गिरी है, 500,000 लोग मारे जा रहे हैं, दुनिया के तमाम देश इजराइल के पक्ष में खड़े हो गए हैं। भारत शुरुआत में एक तरफा इजराइल के पक्ष में खड़ा नजर आया, बाद में बयान चेंज करने की कोशिश करी। दो सवाल आपसे, चूंकि आप पूरी दुनिया के तमाम मुल्क के शीर्ष स्तर के नेताओं से संवाद करते रहते हैं, इस युद्ध को क्या रोका जा सकता था और दुनिया के ताकतवर देशों की क्या भूमिका है? न्यायपूर्ण भूमिका का अदा किया उन्होंने या फिर वो एक विनाश की तरफ पूरी दुनिया को ले जा रहे हैं?
देखिए, आई एम वेरी वरीड अबाउट व्हाट इज गोइंग ऑन इन द वर्ल्ड। सबसे पहले तो माय सिंपथीज आर विद ऑल दोज इनोसेंट पीपल एंड देयर फैमिलीज हु डाइड, गॉट हर्ट, डिस्प्लेस्ड ऑन बोथ साइड्स, ऑन द साइड्स ऑफ पैलेस्टीन्स एंड ऑन द साइड ऑफ इजराइल्स। दे आर ऑल पीपल, इनोसेंट पीपल हु आर कॉट इन दिस वायलेंस। Unfortunately, world has focused on violence as the instrument to negotiate injustice, power, control, benefits. हमें बहुत चिंता होती है क्योंकि एक तरफ चल रहा है यूक्रेन वॉर, दूसरी चल अब शुरू हो गया मिडल ईस्ट वॉर, and if something happens on the China side to Taiwan, it will be a World War III. All of a sudden, pura attention chala gaya Ukraine se Palestine-Israel war mein. America will have to supply more equipment, more help. That means perhaps less help to Ukraine. आज सुबह ही हमारी एक मीटिंग थी जिसमें हम 30 लोग हर वीक मिलते हैं ऑन जूम। उसमें हमारे एक दोस्त हैं दिव्येश मेहता, उन्होंने बड़ी अच्छी सॉर्ट ऑफ एनालिसिस की इसकी कि भाई ये वॉर से अमेरिका इज गोइंग टू बी ओवर एक्सटेंडेड एंड द एडवांटेज वुड बी फॉर रशिया एंड चाइना। यही प्रॉब्लम नेगोशिएशन से सेटल हो सकता था। इट इज सैड दैट अटैक वॉज लॉन्च ऑन इजराइल, दोज हु डिड दैट शुड बी पनिश्ड, बट इन द प्रोसेस इनोसेंट पीपल कांट सफर द वे दे आर सफरिंग। आई एम सरप्राइज दैट इजराइल कुड ओपनली से दैट वेकेट द होल एरिया एंड डिस्प्लेस 1 million पीपल because we have enemy in your neighborhood. I mean, how can you tell this to 1 million people that leave your home, go somewhere, we don't care where you go? It is not human. So my sympathies are always with poor, underprivileged, weaker. I'm for the underdog, always. Because they need help. Unfortunately, जो हमने दुनिया क्रिएट की है अभी, they only worship power and profit. People don't worship poverty. People don't pay attention to the needs of the people. Ukraine may be poor people are suffering. Gaza may be poor people are suffering. And everyone is focused on fighting to negotiate. ये मेरे समझ में नहीं आ रहा कि why don't they use non-violence as an instrument to negotiate on the table? United Nations has become irrelevant. उनको तो कोई पूछता ही नहीं है. कभी कभी पूछा जनरल सेक्रेटरी बोल देते हैं कुछ. They are not on the scene. America has taken a strong position with Israel. India has also taken a strong position with Israel. But look at the suffering of the people there. ये शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम नहीं है, ये लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम है. ये प्रॉब्लम को देखना है इन हिस्टोरिकल परस्पेक्टिव कि लास्ट 75 ईयर से वहां क्या हो रहा है. मैं तो गया हूं पैलेस्टाइन.
ओके,
आई वेंट टू पैलेस्टाइन टू लुक एट दैट टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर.
ओके,
ऑन बिहाफ ऑफ वर्ल्ड टेल यूएन.
ये कौन से सन की बात है? कौन से सन की बात है? कब गए होंगे सैम सर?
97-98 की तरफ. मैं वहां रहा.
तनाव था इन दोनों देशों में तब भी इतना?
बहुत तनाव था. मैं आपको बताऊं, जब मैं पर्सनल स्टोरी बताऊं आपको कि मैं जब गया वहां, तो जब वापिस आ रहा था वहां से, तो इजराइल इमिग्रेशन ने मुझे पूछा कि आप कहाँ गए थे. तो मैंने बताया कि मैं पैलेस्टाइन गया था. तो एकदम सब बदल गया. बिल्कुल चार पांच लोग आ गए, उनके हेड आ गए, बोले क्यों गए थे, क्यों नहीं. एक तो मैं नॉर्मल नहीं दिखता. आई डोंट लुक लाइक अ नॉर्मल पर्सन बिकॉज ऑफ माई हेयर एंड ऑल, प्लस आई एम डार्क. सो दे स्टार्टेड क्वेश्चनिंग मी कि क्यों गए थे, क्या करते हैं आप. तो मैंने बताया कि मैं तो एक बैंक का चेयरमैन हूं. तो उनको तो मानने ही नहीं आया. हमारे आगे जो पर्सन था, ही यूज्ड टू वर्क फॉर मी, वाइट मैन. They let him go. But they sort of harassed me for 45 minutes. And I said to them, I said, dekha, aapne jo aadmi ko jaane diya na, wo aadmi plane nahi pakad sakta because I am delayed. Ye mindset hai. Samjhe? Bole, aap kyun gaye the unka telecom dekhne? Maine bola, because unka telecom requires some attention. Okay. So, ये एक सिंपल एग्जाम्पल है, लेकिन ये एग्जाम्पल से आपको समझ में आएगा कि वहां की एटीट्यूड कैसी है. समझे? राजेंद्र सिंह के ठीक है, आप गए थे उनका टेलीकॉम सुधारने, अच्छी बात है. लेकिन जब आप जाए पैलेस्टाइन में, तब आपको लगता है कि इट इज ए प्रिजन, इट इज नॉट ए फ्री जोन. यू कैन फील इट. ओके, अब ये सब चीजें समझने की जरूरत है. जो हमास ने किया कैनॉट बी जस्टिफाइड, वी एग्री. लेकिन एट द सेम टाइम वी कैनॉट जस्टिफाई व्हाट हैज बीन हैपनिंग टू पीपल ऑफ पैलेस्टाइन फॉर लास्ट 75 इयर्स. इट इज जस्ट नॉट एक्सेप्टेबल. इसकी तो कोई बात ही नहीं कर रहा अभी. तो ये बड़ा कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है. अब देखिए, मिडल ईस्ट के कंट्रीज आर नाउ कमिंग टुगेदर विथ ए प्रॉपर रिस्पॉन्स. आई डोंट नो व्हाट दे विल डू, बट दिस प्रॉब्लम हैज बीन गोइंग ऑन फॉर लॉन्ग टाइम. ओके, यू हैव स्क्वीज्ड लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन अ स्मॉल लिटिल place which is almost like a slum. So there'll be reaction of some kind.
Sam sir, एक आप अमेरिका में रह रहे हैं, अमेरिका के प्रभावशाली लोगों में से हैं, अमेरिका की भूमिका को पूरी दुनिया क्रिटिसाइज कर रहा है कि आप अमेरिका को अपने हथियार, लोग कह रहे हैं कि अमेरिका को अपने हथियार बेचने हैं, इसलिए वो इजराइल के पक्ष में जा रहा है कि आप हथियारों का इस्तेमाल करिए और जो मुल्क हथियार बेच के पैसा कमाने की दौड़ में हो वो मुल्क शांति की बात फिर क्यों करेगा? अमेरिका में क्या इसका विरोध हो रहा है? अमेरिका के लोग इसका विरोध कर रहे हैं?
विरोध हो रहा है, बिल्कुल विरोध हो रहा है। आप देखिए, यू नो सी, हमें देश और देश के लोग में जो फर्क है वो सोचना है। स्टेट इज वन थिंग एंड द पीपल ऑफ द कंट्री आर अनदर थिंग्स। एवरीवेयर आई एम फाइंडिंग दैट पीपल आर लूजिंग कॉन्फिडेंस एंड ट्रस्ट इन देयर गवर्नमेंट्स। एवरीवेयर पीपल हैव अ डिफरेंट व्यू देन द गवर्नमेंट। पीपल डोंट वॉन्ट फाइट्स, nobody wants violence, but state promotes certain level of violence. Okay. People of America don't want war in Ukraine. They didn't want war in Vietnam. I was there at that time. I was drafted to go to Vietnam. Okay. I was supposed to go to Vietnam. Okay. At that time, all of us resisted Vietnam War. देखिए क्या हुआ वियतनाम में, देखिए क्या हुआ इराक वॉर में। ये बड़े बड़े लोग भी झूठ बोलते हैं ना।
ठीक बात है।
बुश के टाइम में बोल दिया कि भाई देर इज यू नो वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन इन इराक, तो लगा दिया। देखिए लिबिया में क्या हुआ। ये वायलेंस पे जो ध्यान देते हैं ना, उससे गरीबों को बहुत नुकसान होता है।
ठीक बात है, मासूम होते हैं लोग, वही मारे जाते हैं।
बिल्कुल, बच्चे, छोटे बच्चे बेचारे। आप देखिए टेलीविजन में छोटे छोटे बच्चे, उनका क्या कसूर है? ओके,
आप उनको मुझे लगता है कि आपको वो दौर याद होगा, आप रहे होंगे समय, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने फिलिस्तीन के पक्ष में बड़ा खुल के बोला था, और फिर हमारी मौजूदा सरकार भारत की सरकार ने खुल के इजराइल का पक्ष लिया। क्या ये भारत सरकार की जो पॉलिसी थी पहले अटैक में एकदम इजराइल के पक्ष में खड़े हो जाना, इजराइल के समर्थन में बात करना, जो अमेरिका कर रहा है वो भारत के हित में था या अहित में था?
वो तो भारत सरकार को सोचना है। एज ए सिटीजन, एज एन इंडिपेंडेंट थिंकर, I would always take side of the underprivileged, people who have been taken advantage of. I would look at the history of last 75 years. That does not mean I would justify violence. But the answer to violence cannot be through violence.
Theek baat
hai. I'm still Gandhian. Okay. I will not answer violence with violence, because in that process, innocent people get hurt, affected. अब एक मिलियन लोग आप देखिए कि कार में बैठ के अपना बैग में सामान लेकर जा रहे हैं, बेचारे कहां जाएंगे, क्या खाएंगे, कहां सोएंगे? ओके, जाइए आप इजिप्ट की बॉर्डर पे, वहां दरवाजे बंद है। ओके, ये कैसे सहन हो सकता है हम लोगों से?
सेम सर, जो भारत जिस तरह से इजराइल के पक्ष में खड़ा हुआ, अमेरिका में जो भारतीय मूल के लोग हैं वो, और टोटल अमेरिका के इंटेलेक्चुअल में भारत के प्रति ये पॉजिटिव गया, सकारात्मक गया, या भारत के लिए नकारात्मक नेगेटिव रहा?
मैंने आपको पहले भी बताया है, यहाँ पे दो टाइप के भारतीय हैं। एक ब्लाइंड फेथ में मंदिर वाले, टेम्पल वाले, जो बीजेपी के साथ है, दे बिलीव बीजेपी कैन डू नो रॉन्ग, फाइन, दैट देयर प्रिविलेज। दूसरा क्लास है दैट इज मोर कंसर्न अबाउट आइडियोलॉजी, विचारधारा, दे थिंक मोर अबाउट फ्यूचर। दैट ग्रुप I'm sure, would feel that there was no need to take side immediately. There is no need to jump the gun. Let it settle down. Understand larger issues. Don't have knee-jerk reaction. And don't support violence against violence.
ठीक बात है. और जो अमेरिका के मूल के लोग हैं, जो अमेरिकन हैं, वो इंडिया के रुख को पसंद कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और अमेरिका में रह रहे लोग अमेरिका के रुख को, अपने ही देश के रुख को पसंद कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं.
अमेरिका में रहने वाले अमेरिकन्स डोंट पे मच अटेंशन टू इंडिया. लेट्स नॉट हैव एनी रॉन्ग आइडिया. दे डोंट केयर. इट इज नॉट पार्ट ऑफ देयर इक्वेशन. ओके, दे आर मोर कंसर्न अबाउट चाइना, रशिया, यूरोप, यूके, लैटिन अमेरिका. इंडिया इज नॉट ऑन देयर रडार. इट इज इंडिया हु थिंक्स that we are a superpower, we are big vishwa guru. It's all bogus.
Sam sir, hum to yahan pe tv channel chalate hain, hum aaj tak dekhte hain, abp dekhte hain, to lagte hain ki usme sudhir chaudhary, anjan om kashyap, roop kalyakat ye batate rehte hain. America dar gaya modi ji ke aage, America kaapne laga modi ji ke aage, America ne phone kiya modi ji ko, aisa lagta hai ki biden bina modi ji se puche kuch karte nahi honge, aur aap keh rahe hain ki
sab bakwas, sab jhoot. आप यहां आइए शिकागो में, 100 लोग को बाहर स्ट्रीट में पूछिए, दे विल टेल यू. ओके, बट इफ यू गो एंड आस्क 100 टेंपल वालास, यू विल गेट डिफरेंट आंसर. सो इट ऑल डिपेंड्स. यू सी, डेटा कैन बी मैनिपुलेटेड एंड पीपल मैनिपुलेट डेटा. दे हैव वन वर्जन. ओके, उनका ऑब्जेक्टिव क्या है? व्हाई वुड एनीबडी इन अमेरिका care about what is going on in India today? Not much. Okay, they have very little interest. Okay, unless there are people like us who are born and raised in India, who have connections in India, friends in India, that's a different group. But average Mexican American, average African American, average white American has no idea of what is going on in India, has no interest in it. At all. It is not part of their equation. China is. Russia is. Europe is, because they have relatives in Europe. Latin America is, because it is next door. Mexico is next door. So it is wrong to project all these false messages.
लेकिन सैम सर, ये तो एक परेशानी बड़ी बात ये है कि हम लगातार अपने पड़ोसियों से संबंध बिगाड़ते जा रहे हैं. श्रीलंका पाकिस्तान से पहले ही खराब थे. श्रीलंका, बांग्लादेश के अलावा अब जब बाहर जाएंगे, कनाडा से पिछले दिनों कितने तल्ख हो गए हमारे रिश्ते. तो दुनिया के सारे मुल्क अगर हम इस तरह उपेक्षित करेंगे, हम पीछे छोड़ जाएंगे, तो भारत की ताकत तो दुनिया में कम होती चली जाएगी. हमारे रिश्ते सुधर नहीं रहे हैं लोगों से. और एक चीज़ और पूछना चाहूँगा सैम सर, आप खुद भी एक टेक्नोक्रेट रहे हैं, क्या आप मानते हैं विदेश मंत्री किसी पॉलिटिशियन को होना चाहिए या ब्यूरोक्रेट को होना चाहिए? क्योंकि जिस हिसाब से विदेश नीति फ्लॉप हुई है इंडिया की, जिस तरह से छोटे छोटे मुल्कों ने हमें आंख दिखाई है, हमारे रिश्ते खराब हुए हैं, तो लोग कहने लगे हैं कि आईएएस अफसर को, रिटायर्ड आईएएस अफसर को आप विदेश मंत्री बनाएंगे तो उसका नतीजा यही होगा. तो दुनिया में जो हमारी स्थिति बन रही है, उसके पीछे कारण क्या है? खराब होती है स्थिति के पीछे कारण क्या है?
देखिए, विदेश विचारधारा हैज टू डू विथ योर बेसिक फिलॉसफी, योर ओन आइडिया ऑफ व्हाट इंडिया स्टैंड्स फॉर. सबसे पहले तो यू हैव टू मेक फ्रेंड्स विथ योर नेबर्स. यू कैनॉट antagonize your neighbors and hope to achieve anything in the long run. We have been fighting with Pakistan for 75 years. We always blame them for everything. We are a big nation and we must act like a big nation and take some hit in the family. If you are a big brother, of course people will hit you once in a while, but that's where your bigness comes in. Okay, you can't settle score all the time and still be big. A big brother says, I'm going to settle score with everybody all the time. You're no longer big. So first foreign policy, according to me, should be focused on neighborhood. Making sure that the entire South Asia gets integrated in a nice way. We handle terrorism collectively. And we create open trade in South Asia, where everybody flourishes. We sort of become the key to transparent borders, where people can move freely, art, culture, education, health would become a focus. Then you can move on to Middle East, because that's our big next neighbor where we have large number of people. Then our relationship with China, our relationship with Soviet Union. These are all important foreign policy issues. Foreign policy is not about our relationship just with the US. Foreign policy is not about our relationship with money, business, trade. Our relationship with Africa is a big challenge. Okay. So it depends. And I think your earlier question about, you know, professional versus sort of politician. Depends. It depends. Okay. I think it basically depends on the overall philosophy. See, our founding fathers had a very clear idea of non-aligned movement. And it's not out of fashion. A lot of people, you know, I saw an article in Wall Street Journal by somebody saying India is old-fashioned. No. It is not fashionable to fight. Okay. It is always right to focus on non-violence, to negotiate your differences. We are not barbaric people. We are living in 21st century. We can reason. We can discuss, debate, understand each other. It may take a little longer time. Immediate need of the hour in Middle East to have ceasefire. Immediately. Somebody has to say, no more weapons, ceasefire. Rather than saying, supply more weapon, go on fighting more, get more people out. It's all wrong direction. You got to stand up today. A country like India should stand up and say, we will promote ceasefire right now.
ठीक बात, बिल्कुल ठीक बात. सेम सर, ये देखिए, मुझे भारत के पास मौका था, बहुत बड़ा मौका था, अगर वो आगे बढ़कर कहता कि हम फिलिस्तीन और इजराइल के बीच वार्ता करा सकते हैं,
बिल्कुल.
तो शायद भारत के लिए बहुत बड़ा मौका होता ना दुनिया में ये.
बिल्कुल. नॉट, इट इज नॉट अबाउट ए मौका. इट इज अबाउट द राइट थिंग टू डू.
राइट थिंग, बिल्कुल सही बात.
Okay. मुझे देश, you know, को विश्व गुरु बनाना है इससे. No. That's not the goal. Goal is, it is the right thing to do.
ठीक बात.
For the people. And we have to do the right things.
आप गांधी के देश में हैं, तो आप कह भी सकते थे कि हम शांति की बात करना चाहते हैं.
We have to take moral high ground. We are a nation, we are perhaps a unique nation that we never fought with anybody. Except with minor fights with Pakistan. We never went conquering countries. You know, look at our history. We were powerful enough. At one time, India was the largest economy in the world. We didn't go on capturing land. We could have started capturing Bahrain. We could have started capturing Middle East. We could have started capturing, you know, Thailand and everything. No one ever did that, because that is India.
ठीक बात है, बिल्कुल सही बात है सैमसन। मैं आखिर में ये और पूछना चाहूंगा आपसे कि जिस समय पूरी दुनिया रो रही थी अस्पताल की वो तस्वीरें देखकर, जहां बच्चे और महिलाओं के शव पड़े हुए थे, उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति इजराइल के प्राइम मिनिस्टर की पीठ थपथपा रहे थे, उस घटना का क्या विरोध में लोग सड़कों पर भी आए हैं, प्रदर्शन भी हुए अमेरिका में, क्योंकि अमेरिका एक डेमोक्रेटिक कंट्री है।
बहुत प्रदर्शन हुआ है, सब जगह हुआ है, शिकागो में हुआ है, वाशिंगटन में हुआ है, आप देखिए इन एवरी मेजर सिटीज पीपल हैव कम टूगेदर इन फेवर ऑफ सॉर्ट ऑफ बेसिकली सेइंग वी नीड सीज फायर, स्टॉप दिस मैडनेस।
तो ये बात अमेरिका के राष्ट्रपति को समझ में क्यों नहीं आ रही कि उनके देश में इतना विरोध हो रहा है, तो वो क्यों सीज फायर की बात ना करके इजराइल के प्राइम मिनिस्टर की पीठ क्यों थपथपा रहे हैं?
We can ask the same question about Ukraine. We could have asked the same question about Vietnam, about, you know, Syria, about Iraq. Okay. ये हमारी दृष्टि से वर्ल्ड वॉर टू का जो माइंडसेट है वो अभी बदला नहीं है। 75 साल के बाद लोग वही सोचते हैं कि वर्ल्ड वॉर टू में जो हुआ वैसा फिर होगा, सो वी शुड फाइट वॉर विथ वॉर। इन दिस डे एंड एज वी हैव टू चेंज अवर थिंकिंग एंड से वी विल नॉट फाइट वॉर विथ वॉर, वी विल फाइट वॉर विथ नॉन वायलेंस, कॉन्वर्सेशंस, नेगोशिएशंस, रिस्पेक्ट फॉर इच अदर, कंसर्न फॉर द पुअर पीपल, innocent people who are being killed. ये तो कोई rocket science तो है नहीं।
बिल्कुल ठीक बात है। सैम साहब, आखिरी सवाल मेरा आपसे कि क्या अमेरिका को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी जो इजराइल के साथ खड़ा हुआ है, या आने वाले समय में यह अमेरिका के लिए खराब डिसीजन साबित होगा, विरोध होगा?
दुनिया को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, नॉट जस्ट अमेरिका, बिकॉज इनोसेंट पीपल विल बी किल्ड, more and more people will be displaced, whether they go east or they go west, they will be displaced, and the cost of that is very high. Okay. And like I said, if this conflict gives an idea to China to create another little mischief in Taiwan, you got three big conflicts. Conflict in Ukraine, in Middle East, and in Asia Pacific. You got a serious problem now. Okay? And I hope people think about these things. And who are the winners and who are the losers in this conflict? And what is the price that world will pay for these three conflicts together? See, all of a sudden, because of Israel Palestine war, Ukraine is on the back burner. Canada Khalistan issue is on the back burner. Nobody's talking about it. Taiwan issue is on the back burner. Okay. North Korea is on the back burner. But you got to think about all of these issues. And the only solution is non-violence. Violence is not the solution.
देखो ठीक बात है सैम सर, और गांधी के देश के लोग तो ये बात हमेशा से कहते रहे हैं कि अहिंसा परमो धर्मा, अहिंसा से बड़ा कोई धर्म नहीं है। शुक्रिया सैम सर, आपने हमें इतना समय दिया आज की बातचीत के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।
थैंक यू।
तो ये थे सैम पित्रोदा। आपने सुना कि अमेरिका कितनी बड़ी गलती कर गया, आने वाले समय में अमेरिका को कितना भुगतना होगा। गाजा से 10 लाख लोग खाली करके कहां जाएंगे कोई नहीं सोच रहा। भारत को अभी भी आगे बढ़ना चाहिए, दोनों मुल्कों के बीच शांति की बात की पहल करनी चाहिए। हमारी पहचान अहिंसा से है, हिंसा से नहीं। हमारी हिंसा की मानसिकता को दुनिया नकार रही है। ये सारी बातें आपने सुनी, मुझे आपकी राय का इंतजार रहेगा। शुक्रिया, थैंक यू।
you.